सुजीत कुमार की आवाज में रूस की संघीय कार्यपालिका। 1993 में लागू रूस के संविधान ने रूस में संघात्मक शासन की स्थापना की है। संघ अथवा केंद्र की कार्यपालिका शक्ति दोहरी कार्यपालिका में समाहित है। इस दोहरी कार्यपालिका के दो भाग हैं, पहला राष्ट्रपति और दूसरा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा संघीय मंत्री। किंतु इसमें राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली तथा वास्तविक सत्ता का केंद्र है। रूस के संविधान ने राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाया है तथा कुछ क्षेत्रों में तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली है। रूसी संघ का राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(1) के तहत राष्ट्रपति रूसी गणराज्य का राजाध्यक्ष है। रूस के संविधान का अध्याय 4 रूसी गणराज्य का राष्ट्रपति शीर्षक से युक्त है। इस अध्याय में अनुच्छेद 80-93 तक का उल्लेख है। संविधान के इस अध्याय में राष्ट्रपति के निर्वाचन, कालावधि, शक्तियों, महाभियोग आदि महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। रूस के राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81(1) में किया गया है, किंतु निर्वाचन प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख 1995 में स्वीकृत रूसी संघ के राष्ट्रपति के निर्वाचन का संघीय कानून में है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन संपादित होता है। रूस में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: सार्वभौमिक, समान, प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान द्वारा रूसी संघ के नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हुए मतदाता किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में मत दे सकते हैं। तीसरा, 18 वर्ष या उसके अधिक आयु का रूसी नागरिक इस निर्वाचन में मत देने का अधिकार रखता है। चौथा, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप रूस की संघीय सभा के उच्च सदन संघीय परिषद द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित करवाई जाती है। पांचवा, राष्ट्रपति के निर्वाचन का दिन वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की निर्धारित संवैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद का प्रथम रविवार होता है। छठा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में पूरा प्रदेश एक निर्वाचन जिले की भांति होता है। आठवां, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को किसी निर्वाचक संघ के सम्मेलन द्वारा मनोनीत होना आवश्यक है। नवां, कोई भी निर्वाचक संघ या गुट केवल एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत कर सकता है। दसवां, मनोनयन की यह प्रक्रिया गुप्त मतदान द्वारा निर्धारित होती है। ग्यारहवां, निर्वाचक संघ या गुट उसी व्यक्ति को उम्मीदवार बना सकता है जो उनसे संबंध हो अथवा जो किसी सार्वजनिक संघ का सदस्य न हो। बारहवां, राष्ट्रपति निर्वाचन में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मतदान के 15 दिन के भीतर मतगणना करवानी होती है। तेरहवां, राष्ट्रपति पद पर विजय के लिए उम्मीदवार को एक न्यूनतम फोटो कोटा प्राप्त करना होता है। भाग लेने वाले कुल मतदाताओं के कुल मतों में से जो उम्मीदवार आधे से अधिक मत प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रीय पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि उम्मीदवार 2 से अधिक है तथा कोई भी उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त करने में असफल होता है तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग पुनः मतदान की तिथि घोषित करता है, जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवार मैदान में होते हैं। पुनः मतदान आम निर्वाचन की मतगणना के बाद के 15 दिन के भीतर होना आवश्यक हो जाता है। 14वां, यदि किन्हीं कारणों से पुनः मतदान में भी कोई उम्मीदवार निर्वाचित नहीं होता है तो संघीय परिषद पुनः निर्वाचन की व्यवस्था करती है। पुनः निर्वाचन मूल आम निर्वाचन के 4 माह के भीतर होना आवश्यक है। 15वां, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित उम्मीदवार केंद्रीय निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के पश्चात 30वें दिन अपना पद धारण करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति स्पष्ट है कि रूस के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति काफी जटिल है। इस प्रक्रिया में कुछ तत्व फ्रांस के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की भांति है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। रूस के संविधान के अनुच्छेद 81 में यह प्रावधान है कि रूसी संघ का कोई भी नागरिक जो 35 वर्ष की आयु से कम का नहीं हो तथा जिसे रूसी संघ में निवास करते हुए 10 वर्ष से कम न हुए हों राष्ट्रपति बन सकता है। रूसी संघ के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संघीय कानून 1995 की धारा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी नागरिक जो विधिक न्यायालय द्वारा अक्षम घोषित किया गया हो अथवा विधिक न्यायालय के किसी निर्णय द्वारा सजा प्राप्त हो रूस के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने का अधिकार नहीं रखता है। कार्यकाल, संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। इसी अनुच्छेद में आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति रूस के राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार से ज्यादा निर्वाचित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने में अस्थायी तौर पर अक्षम होने पर उसके अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, किंतु उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रूसी संसद के निम्न सदन ड्यूमा को भंग करने तथा संविधान पर पुनर्विचार या संशोधन करने के लिए जनमत संग्रह करवाने का अधिकार नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति स्वास्थ्य या अन्य कारणों से त्यागपत्र दे दे अथवा महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए तो पद रिक्त के 3 माह के भीतर नए चुनाव करवाए जाने आवश्यक हैं। रूस के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य। पूर्व सोवियत संघ के विघटन से उत्पन्न हुई अव्यवस्था के रूप ने रूस के राजनीतिक स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। रूस के अस्तित्व में आने के समय देश अलगाववादी ताकतों से प्रभावित हो रहा था। ऐसी स्थिति में रूस के संविधान निर्माताओं ने एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की संकल्पना को स्वीकार किया, किंतु संघीय व्यवस्था तथा लोकतंत्र को अपनाने के कारण उसकी शक्तियों को सीमित कर अंकुश भी लगाया गया। रूस के राष्ट्रपति को प्राप्त व्यापक शक्तियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सर्वोच्च नीति निर्देशक। रूस का राष्ट्रपति अपने देश की आंतरिक एवं विदेश नीतियों का सर्वोच्च निर्देशक होता है। राज्य का अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह देश की आंतरिक नीतियों के मूलभूत दिशा निर्देशों को निश्चित करे तथा सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करे। राष्ट्रपति का यह विधिक विशेषाधिकार संविधान और संघीय कानूनों पर आधारित है, किंतु संविधान के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति सभी अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों एवं कार्यों को पूर्ण करने का कार्य नहीं करता है, अपितु केवल नीतियों का निर्देशन करता है। नीतियों के कार्यान्वयन का कार्य प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रियों का है। राज्य की आंतरिक नीतियां मुख्यतः शक्ति पृथक्करण तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। राष्ट्रपति विदेश नीति का भी निर्देशक होता है। उसके पास विदेश नीति के निर्देशन का व्यापक अधिकार होता है। वह कई परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में रूस की स्थिति को स्पष्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वह रूस का प्रतिनिधित्व करता है तथा दूसरे देशों से बातचीत एवं संधियां करता है। दूसरा, कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति रूस का सर्वोच्च कार्यपालक भी है। राजाध्यक्ष होने के कारण वह विभिन्न विभागों तथा संघ एवं इकाइयों में समन्वय का भी प्रयास करता है। उसे नियुक्ति एवं प्रच्युति का व्यापक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 83 के प्रावधानों के अधीन वह देश के शीर्ष विशिष्ट पदों पर लोगों को नियुक्त करता है एवं आवश्यक होने पर प्रच्युत करता है अथवा प्रच्युति की सिफारिश करता है। वह प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है, किंतु ऐसा करते समय उसे ड्यूमा की सहमति लेनी होती है। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर वह उप प्रधानमंत्री तथा संघीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार रखता है। वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के इस्तीफे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति संघीय कानूनों द्वारा प्राप्त पद स्थिति के आधार पर सुरक्षा परिषद का गठन करता है तथा उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह रूसी संघ के राष्ट्रपति के स्टाफ का गठन करता है। उसे अपने देश के राजदूतों को नियुक्त करने एवं पदमुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय सभा की संबंधित समिति या आयोग से परामर्श कर वह विदेशी राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रूसी संघ के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त एवं प्रत्यावर्तित कर सकता है, अर्थात वापस बुला सकता है। तीसरा, विधायी अधिकार। रूसी संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ही कानून का रूप लेता है। उसे ड्यूमा में कानूनों को प्रस्तावित करने का अधिकार है। संघीय कानूनों पर वह वीटो अधिकार का प्रयोग कर सकता है। संघीय सभा द्वारा पारित विधेयक 5 दिन के भीतर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति को 14 दिन में उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, किंतु विधेयक से असहमत होने पर वह वीटो का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में संघीय सभा द्वारा पुनः विधेयक को पारित करने हेतु 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो काफी कठिन है। यदि 2/3 बहुमत से संघीय सभा के दोनों सदन विधेयक पारित कर दे तो राष्ट्रपति को 7 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करने होते हैं। राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाने का भी अधिकार है। उसे प्रतिवर्ष संघीय सभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राज्य की आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों तथा राष्ट्र की स्थिति पर संदेश देने का अधिकार है। राष्ट्रपति संविधान तथा संघीय कानून के अनुसार संघीय सभा के प्रतिनिधि सदन ड्यूमा के चुनाव की घोषणा करता है। उसे संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत ड्यूमा को भंग करने का अधिकार है। चौथा, वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियाँ भी हैं। वह अपनी सरकार एवं देश की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष बजट तैयार कर ड्यूमा में प्रस्तुत करवाता है। संघीय सभा द्वारा उसके बजट को पारित न करने पर वह अनुवर्ती बजट के लिए डिग्री आदेश जारी कर सकता है अथवा संघीय सभा द्वारा पारित किसी वित्तीय विधेयक पर वह वीटो जारी कर सकता है। वह रूसी संघ के केंद्रीय बैंक के सभापति को नियुक्त करता है तथा उसे हटा सकता है, किंतु उसे नियुक्ति और प्रच्युति की ड्यूमा को जानकारी देनी होती है। छठा, न्यायिक शक्तियां, रूस के राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार है, वह रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों, रूसी संघ के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा रूसी संघ के उच्चतम मध्यस्थता न्यायालय के न्यायाधीशों, रूसी संघ के महान्यायवादी तथा अन्य संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति हेतु संघीय परिषद को नाम प्रस्तावित करता है। वह महान्यायवादी को कार्य मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को भी संघीय परिषद के सम्मुख रखता है। सातवां, सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति रूस के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, उसे सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडरों को नियुक्त करने तथा बर्खास्त करने का अधिकार होता है। वह रूसी संघ की सैन्य नीति का अनुमोदन करता है, रूसी संघ के विरुद्ध किसी प्रकार की उत्तेजक कार्यवाही होने पर अथवा तात्कालिक धमकी मिलने पर राष्ट्रपति रूसी संघ के प्रदेश में मार्शल लॉ लागू कर सकता है, यद्यपि मार्शल लॉ लागू करने की सूचना उसे संघीय सभा के दोनों सदनों को तत्काल देनी होगी। आठवां, आपात शक्तियां, रूसी संघ के संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान में उल्लिखित प्रावधानों एवं परिस्थितियों के अंतर्गत रूस के किसी एक या कुछ भागों पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है, किंतु उसे इस संदर्भ में संघीय सभा के दोनों सदनों, संघीय परिषद तथा ड्यूमा को तत्काल सूचना भेजनी होती है। नवा, विविध शक्तियां, उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त भी रूसी संघ के राष्ट्रपति को कई शक्तियां प्राप्त हैं जिनमें निम्न प्रमुख हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार उसे विवाद समाधान का अधिकार प्राप्त है, रूसी संघ के अधिकार वाले अंगों तथा इकाइयों के अधिकार वाले अंगों के मध्य अथवा विभिन्न राज्यों के अधिकार वाले अंगों में किसी प्रकार का विवाद होने पर राष्ट्रपति विवाद समाधान प्रक्रिया का प्रयोग कर सकता है, यदि किसी निर्णय पर सहमति न बन पाए तो वह विवाद को संबंधित न्यायिक न्यायालय को भेज सकता है। ख, संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह इकाइयों के कार्यकारिणी शक्ति के अंगों द्वारा बनाए गए ऐसे किसी कानून को निरस्त कर सकता है यदि यह कानून संविधान तथा संघीय कानूनों, रूसी संघ के अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के विरुद्ध हो अथवा मानव तथा नागरिक कानूनों अथवा स्वतंत्रताओं को खंडित करते हों अथवा किसी न्यायालय में यह मुद्दा विचाराधीन हो। तीसरा, राष्ट्रपति को राजनीतिक शरण देने का अधिकार प्राप्त हो। चौथा, राष्ट्रपति रूस के गौरव को बढ़ाने वालों को सम्मानित करता है तथा अवैतनिक अलंकारों, उच्च सैन्य रैंक तथा उच्च विशिष्ट अलंकारों को निश्चित करता है। पांचवा, राष्ट्रपति कार्यकारी आदेश एवं डिग्री जारी करने का अधिकार रखता है, इन आदेशों एवं डिग्रियों को रूसी संघ के संपूर्ण प्रदेश पर मानना बाध्यकारी होगा, किंतु यह आदेश या डिग्री संविधान और संघीय कानून के विरुद्ध नहीं हो सकता है। छठा, वह रूसी संघ की नागरिकता के प्रश्न, बाह्य देश के नागरिक को रूस की नागरिकता देने अथवा रूसी संघ के नागरिक को दोहरी नागरिकता आदि की व्याख्या करता है। सातवां, उसे संविधान ने व्यक्तियों तथा नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का गारंटर माना है। आठवां, रूसी संघ की अखंडता, स्वतंत्रता तथा संप्रभुता की रक्षा का दायित्व भी संविधान राष्ट्रपति को प्रदान करता है। इस प्रकार संविधान तथा संघीय कानून रूस के राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करता है। इसकी इन्हीं शक्तियों एवं अधिकारों के कारण कई विद्वानों ने उसके पद पर अधिनायकवादी हो जाने का संदेह प्रकट किया है। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक या वास्तविक, रूस में राष्ट्रपति का पद भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटिश साम्राज्य की भांति औपचारिक नहीं है, अपितु वह संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति शक्तिशाली है। रूस का संविधान उसे व्यापक अधिकार प्रदान करता है, राष्ट्रपति कानून बनाने का प्रस्ताव ला सकता है, यदि ड्यूमा उसके द्वारा प्रस्तावित विधेयक को पारित नहीं करे तो वह डिक्री या आदेश जारी कर सकता है, ड्यूमा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता है, यदि राष्ट्रपति का बजट ड्यूमा पारित न करे तो वह अनुवर्ती बजट का प्रयोग कर सकता है, वह ड्यूमा को भंग कर या भंग करने की धमकी दे सकता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा संघीय मंत्री की नियुक्ति और बर्खास्ती का उसे अधिकार है। यद्यपि रूस का संविधान राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, किंतु उस पर राजनीतिक सीमाएं भी हैं। यदि राष्ट्रपति ड्यूमा को भंग करता है और नए चुनाव करवाता है तो उसे इस कदम का राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। यदि ड्यूमा के नए निर्वाचन के बाद उसका विरोध करने वाले सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है तो यह राष्ट्रपति के लिए और भी ज्यादा परेशानियों का कारण बन सकता है। संविधान भले ही उसे शक्तिशाली बनाता है, किंतु देश का राजनीतिक पर्यावरण उनके अधिकारों को संतुलित कर देता है। प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्रिमंडल, रूस की संघीय कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा संघीय मंत्री सम्मिलित हैं को संविधान में सरकार के नाम से संबोधित किया गया है। रूस के संविधान का अध्याय 6 रूसी संघ की सरकार के शीर्षक से युक्त है जिसमें अनुच्छेद 110 से 117 को सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110-2 में कहा गया है, रूसी संघ की सरकार में रूसी संघ की सरकार का सभापति, सरकार के उपसभापति तथा संघीय मंत्री सम्मिलित हैं। रूस के संविधान में प्रधानमंत्री को संघीय सरकार का सभापति, उप प्रधानमंत्रियों को उपसभापति कहा गया है। सरकार रूस में राष्ट्रपति और संघीय सभा के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। नियुक्ति। रूस में सरकार के सभापति अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए ड्यूमा की सहमति लेनी होती है। प्रत्येक राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार का नाम अपने निर्वाचन के 2 सप्ताह के भीतर घोषित करना पड़ता है। यदि सरकार ने त्यागपत्र दे दिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री का नाम ड्यूमा ने अस्वीकृत कर दिया हो तो राष्ट्रपति को 1 सप्ताह के भीतर पुनः प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा करनी होती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित नाम पर ड्यूमा को 1 सप्ताह के भीतर विचार करना होता है। ड्यूमा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित नाम पर लगातार 3 बार असहमति प्रकट कर दे तो राष्ट्रपति अपनी ओर से प्रधानमंत्री को नियुक्ति कर देता है और ड्यूमा को भंग कर नए निर्वाचन की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री अपने नियुक्ति के 1 सप्ताह के भीतर राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियों के लिए संघीय निकायों की संरचना एवं प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के परामर्श से उप प्रधानमंत्रियों तथा संघीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है। रूस में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री अथवा संघीय मंत्री संघीय सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 116 में यह प्रावधान किया गया है कि रूसी संघ की सरकार नवनिर्वाचित सरकार के सम्मुख अपनी शक्तियां समर्पित कर देगी, अर्थात रूस में जब भी नया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो पहले से चली आ रही सरकार अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देती है। संघीय सभा का निम्न सदन ड्यूमा चाहे तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ड्यूमा अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है। यदि इस पर राष्ट्रपति कार्यवाही नहीं करे और पुनः 3 महीनों के भीतर वह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति 7 दिन के भीतर या तो सरकार को बर्खास्त कर सकता है या फिर ड्यूमा को भंग कर नए निर्वाचन की घोषणा कर सकता है। किंतु अनुच्छेद 109 में यह प्रावधान है कि यदि ड्यूमा के निर्वाचन के बाद 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो उपर्युक्त परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्रपति ड्यूमा को भंग नहीं कर सकता है। सरकार की शक्तियां। रूस के संविधान के अनुच्छेद 114 में रूस सरकार की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में उल्लेख लिया गया है, किंतु इस अनुच्छेद के अतिरिक्त संविधान के अन्य अनुच्छेदों तथा रूसी संघ की सरकार पर संघीय कानून में भी सरकार की कृत्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। रूस की सरकार की प्रमुख शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, कार्यपालिका शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 110 में यह प्रावधान किया गया है कि रूसी संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग रूसी संघ की सरकार द्वारा किया जाएगा। इस सरकार में सभापति प्रधानमंत्री, उपसभापति उप प्रधानमंत्री तथा संघीय मंत्री सम्मिलित होंगे। अनुच्छेद 113 के अनुसार प्रधानमंत्री संविधान, संघीय कानूनों तथा राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप सरकार के कार्यों का दिशा निर्देशन निश्चित करेगा तथा कार्य को अंजाम देगा। द्वितीय, वित्तीय शक्तियां। रूसी संघ की सरकार वित्त एवं बजट से संबंधित गतिविधियों में प्रमुख सहभागी है। संघीय बजट का निर्माण करने, उसे स्वीकृति प्रदान करवाने तथा क्रियान्वित करने का कार्य सरकार का है। सरकार ड्यूमा में संघीय बजट प्रस्तुत करती है तथा उसके क्रियान्वयन पर ड्यूमा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। तीसरा, सामाजिक नीतियों का क्रियान्वयन। रूसी संघ की सरकार संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में एकीकृत सरकारी नीतियों को पूरे रूसी संघ पर लागू करवाने का प्रबंध करती है। इनको क्रियान्वित करने के लिए संघीय कानून रूसी संघ की सरकार को अधिकार प्रदान करते हैं। चौथा, संघीय संपत्ति का प्रबंधन। रूसी संघ की सरकार राजकीय संपत्ति प्रबंधन की राजकीय समिति के माध्यम से संघीय संपत्ति के सामान्य प्रबंधन करती है। वह निजीकरण के प्रश्नों को सुलझाती है तथा संघीय उद्यमों का तार्किक उपयोग करती है। पांचवा, रक्षा सुरक्षा तथा विदेश नीति का क्रियान्वयन। सरकार राज्य की रक्षा तथा सुरक्षा नीतियों को यथार्थ रूप देने का प्रयास करती है तथा विदेश नीति को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। इनसे संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के अध्यक्ष इन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं तथा राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं, किंतु इसके साथ ही सरकार के पास भी इन नीतियों को क्रियान्वित करने की व्यापक शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व है। छठा, नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता संबंधी दायित्व। रूसी संघ की सरकार नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा के दायित्वों का भी निर्वाह करती है। वह राज्य में कानून एवं व्यवस्था के माध्यम से अपने उक्त कार्यों का को पूर्ण करती है। सातवां, आदेश या डिक्री जारी करने की शक्ति। रूस के संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार रूसी संघ की सरकार संविधान, संघीय कानूनों तथा राष्ट्रपति के आदेशों एवं डिक्री को क्रियान्वित करने के लिए डिक्री या कार्यपालिका आदेश जारी कर सकती है। ये आदेश संपूर्ण रूसी संघ पर लागू होने की क्षमता रखते हैं। राष्ट्रपति को सरकार द्वारा जारी आदेशों या डिक्री को समाप्त करने का अधिकार है। यदि यह आदेश या डिक्री संविधान, संघीय कानूनों अथवा राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध हों, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद और सरकार, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को व्यापक शक्तियां प्राप्त है।